एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। तो आज हम एक ऐसे उपन्यास पर बात करने वाले हैं जो आकार में तो छोटा है लेकिन इसका असर बहुत बहुत गहरा है।
एक ऐसी किताब जिसे आप एक बार में पढ़ तो लेंगे पर वो आपके साथ बहुत दिनों तक रहेगी।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं समकालीन फ्रांसीसी लेखिका माइलिस डी कैरेंगल के उपन्यास ईस्ट बाउंड की।
और कैरेंगल की जो लिखाई है,
हाँ
अरे उसकी सबसे खास बात है भाषा का प्रवाह।
सही कहा, उनके वाक्य बहुत लंबे होते हैं, इतने लंबे कि कभी कभी लगता है सांस रुक जाएगी। और शायद
यही तो वो चाहती हैं, वो पाठक को किरदारों की घबराहट का हिस्सा बना लेती हैं।
बिल्कुल, और ईस्ट बाउंड में तो ये एहसास और भी गहरा हो जाता है क्योंकि पूरी कहानी एक चलती हुई ट्रेन में है,
ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस।
जो सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, वो अपने आप में एक दुनिया है, एक चलता फिरता जेल भी और किसी के लिए आज़ादी का रास्ता भी। रूस का वो बर्फीला अंतहीन विस्तार और उसके बीच से गुजरती ये लोहे की लकीर।
और इसी चलती फिरती दुनिया में दो बिल्कुल अनजान जिंदगियां एक दूसरे से टकराती हैं,
एक 20 साल का रूसी सैनिक अल्योशा और दूसरी एक फ्रांसीसी महिला हेलेन।
और कहानी एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मुश्किल सवाल पर टिकी है।
सवाल ये है कि क्या आप किसी अनजान हताश इंसान की मदद के लिए अपनी सुरक्षा, अपनी आजादी, मतलब सब कुछ दांव पर लगा देंगे?
तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, पहले अल्योशा की दुनिया में झांकते हैं।
अल्योशा की दुनिया,
उसके दुनिया में एक अजीब सी गंध है, मतलब पसीना, सस्ती वोडका और डर। उसे जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया है
और वो जानता है कि उसे कहां भेजा जा रहा है। वो दिवोशना की हकीकत से वाकिफ है।
हाँ, ये रूसी सेना में नए रंगरूटों के साथ होने वाली एक बहुत ही क्रूएल रैगिंग की प्रथा है।
ये सिर्फ मजाक नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये किसी की इंसानियत को, उसके वजूद को कुचलने का एक सोचा समझा तरीका है। उसकी बोगी में बैठे दूसरे सैनिक बेफिक्र हैं, पी रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन अल्योशा, उसका दिल बैठा जा रहा है।
उसे लग रहा है जैसे ये ट्रेन उसे सीधे मौत के मुंह में ले जा रही है।
आपने जो देवोशीना की बात की वो बहुत जरूरी है, ये कोई साधारण बुलिंग नहीं है, ये एक सिस्टम है।
सोवियत संघ के समय से चली आ रही एक परंपरा जो व्यक्ति की पहचान को मिटाकर उसे सेना की मशीन का एक पुर्जा बना देती है।
तो अल्योशा का डर वो कायरता नहीं है?
नहीं, ये एक इंसान की अपनी आत्मा को बचाने की छटपटाहट है।
कैरिंगल यहाँ व्यक्ति बनाम व्यवस्था की लड़ाई को बहुत करीब से दिखाती हैं, है ना?
हाँ, एक तरफ एक अकेला डरा हुआ लड़का और दूसरी तरफ एक बेरहम अमानवीय सिस्टम।
तो ये तो हुई अल्योशा की दुनिया, पर कहानी का दूसरा सिरा
उतना ही अकेला है पर बिल्कुल अलग वजहों से, वो है हेलेन की दुनिया।
अच्छा, हेलेन अपने 30वें दशक के आखिरी सालों में है और एक आरामदायक सेकेंड क्लास के डिब्बे में सफर कर रही है। वो अपनी सीट पर बैठी बाहर देख रही है, लेकिन असल में वो कुछ नहीं देख रही,
वो अपने अंदर झांक रही है।
बिल्कुल, वो क्रैस्नोयार्स्क में अपने एक रूसी प्रेमी के साथ टूटे हुए रिश्ते से भाग रही है।
तो मतलब दोनों ही किरदार भाग रहे हैं, एक बाहरी दुश्मन से और दूसरी अपने अंदर के दुख से।
सही कहा, और ट्रेन यहाँ एक, क्या कहते हैं, लिमिनल स्पेस बन जाती है, एक ऐसी जगह जो न यहाँ की है न वहाँ की,
एक दहलीज। और अक्सर ऐसी ही जगहों पर जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ आते हैं।
हेलेन तो शांति ढूंढने निकली है सबसे कटकर, पर उसे अंदाजा भी नहीं कि वो किसी और की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली है।
और वो मोड़, वो आता है एक बहुत ही मामूली से पल में।
हाँ, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, बस एक नजर का टकराना। अल्योशा अपनी बोगी की घुटन से बेचैन होकर ट्रेन में यूं ही भटक रहा है
और वो हेलेन्स के डिब्बे के पास से गुजरता है
और दरवाजे के शीशे से उनकी नजरें मिलती हैं, बस एक सेकंड के लिए।
हाँ, लेकिन उसे एक सेकंड में
एलेन को वर्दी के पीछे छिपा एक डरा हुआ मासूम लड़का दिखता है। उसे वो सैनिक नहीं, एक बच्चा लगता है जो खो गया है।
और अल्योशा के लिए उस नजर का क्या मतलब रहा होगा? मतलब सोचिए, वो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ हर कोई या तो उसका दुश्मन है
या उसकी तकलीफ से बेपरवाह है।
और अचानक एक अजनबी औरत की आंखों में उसे नफरत नहीं बल्कि शायद सिर्फ एक हैरानी
या शायद दया का एक छोटा सा अंश,
और उसी एक नजर से शायद अल्योशा के मन में पहली बार एक उम्मीद जगती है
कि कोई है जो उसे एक इंसान की तरह देख रहा है।
ये एक छोटा सा पल है, लेकिन यहीं से कहानी का रुख बदल जाता है,
क्योंकि अब ये सिर्फ दो किरदारों की कहानी नहीं रहती है।
ये शक्ति और विशेषाधिकार की कहानी बन जाती है ना।
बिल्कुल। हेलेन एक पश्चिमी यूरोपियन नागरिक होने के नाते उस ट्रेन में बहुत मजबूत स्थिति में है। उसके पास पासपोर्ट है, पैसे हैं, एक अलग कमरा है,
और सबसे बड़ी बात आज़ादी है,
जबकि अल्योशा के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये है कि हेलेन अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगी,
और ये सवाल बहुत जल्द एक बड़ी परीक्षा में बदल जाता है।
हाँ, अल्योशा की बोगी में हालात बिगड़ने लगते हैं। वो अपनी आंखों के सामने हिंसा होते देखता है।
उसका जो डर अब तक मन में था, वो अब हकीकत बन के उसके सामने खड़ा हो जाता है।
उससे साफ हो जाता है कि अगर वो वहां रुका तो वो नहीं बचेगा। ये अब कोई वहम नहीं है।
और उसी खौफ और हताशा में
वो एक फैसला लेता है। वो वापस हेलेन के डिब्बे तक पहुंचता है।
वो दरवाजा नहीं खटखटाता,
नहीं, कोई शोर नहीं करता, बस एक परछाई की तरह वहां आकर खड़ा हो जाता है। जब हेलेन दरवाजा खोलती है तो वो स्कूल में सीखी हुई टूटी फूटी फ्रेंच में बस कुछ कह पाता है,
मैडम एक्सक्यूज मी।
हाँ, लेकिन उसके शब्द जरूरी नहीं है। उसकी आंखों में जो मौत का डर है वो सब कुछ कह देता है।
और यहीं आकर कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना।
हेलेन के सामने एक फैसला है,
एक तरफ उस लड़के की जान और दूसरी तरफ रूसी सेना से पंगा लेने का खतरा,
जेल, देश निकाला, कुछ भी हो सकता है।
मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि क्या उसका फैसला पूरी तरह से निस्वार्थ है, या क्या वो अपनी टूटी फूटी जिंदगी में कोई मकसद ढूंढ रही है,
और अल्योशा अनजाने में उसका एक जरिया बन जाता है।
हाँ,
ये बहुत जरूरी सवाल है, और शायद कैरिंगल जानबूझकर इसका सीधा जवाब नहीं देती। हेलेन का फैसला वो किसी ठंडे दिमाग से लिया गया फैसला नहीं है,
वो एक सहज प्रतिक्रिया है।
हाँ, इंसानियत के नाते उठी एक लहर है। वो उस लड़के की आंखों में डर देखती है और अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे डर भूल जाती है।
वो अपनी टूटी हुई जिंदगी से भागने वाली एक यात्री से
किसी और की जिंदगी बचाने वाली एक भागीदार बन जाती है, और वो उसे अंदर खींच लेती है।
और जैसे ही वो दरवाजा बंद होता है, वो दोनों एक अपराध में साझीदार बन जाते हैं,
से साजिशकर्ता। अब उनका रिश्ता शब्दों का नहीं है, बल्कि खामोशी और सांसों में घुले हुए तनाव का है।
वो फुसफुसाकर इशारों में बात करते हैं।
उस छोटे से डिब्बे में एक अजीब सा रिश्ता बनता है। हेलेन एक माँ की तरह उसकी हिफाजत करती है,
और अल्योशा एक बच्चे की तरह अपनी जिंदगी एक अजनबी के हाथों में सौंप देता है।
और यहाँ भाषा का कोई मतलब नहीं रह जाता। उनका संवाद डर, करुणा और उम्मीद की उस भाषा में होता है
जिसे समझने के लिए किसी व्याकरण की जरूरत नहीं होती।
ये दिखाता है कि इंसान का इंसान से जो असल रिश्ता है, वो शायद शब्दों के बनने से भी पहले का है।
और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स।
अचानक आधी रात में ट्रेन साइबेरिया के घने काले जंगल के बीच रुक जाती है। कोई स्टेशन नहीं, कोई रोशनी नहीं,
बस बर्फ और अंधेरा।
यही उनका एकमात्र मौका है भागने का।
और जो भागने वाला सीन है, कमाल का है। मुझे याद है जब मैंने उसे पढ़ा था तो मेरी सांसें तेज हो गई थी।
केरंगल ऐसा क्या करती हैं अपने लिखने में कि वो तनाव कागज से उतरकर सीधे आपके जहन में आ जाता है?
वो अपने वाक्यों से जादू करती हैं। यहाँ उनके वाक्य और लंबे और तेज हो जाते हैं। वो भागते हैं, हाँफते हैं, जैसे
किरदार खुद भाग रहे हो।
हाँ, उन्हें कूदना होगा अभी इसी वक्त, ट्रेन के दोबारा चलने से पहले, उस अंधेरे में, उस बर्फ में।
आप पढ़ते नहीं हैं, आप उस पल को जीते हैं। वो काटने वाली ठंड, घुटनों तक धंसती बर्फ, ट्रेन के ब्रेक की चीख, सब कुछ इतना असली लगता है।
बिल्कुल। और वो साइबेरिया का जंगल, वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं है ना, वो एक प्रतीक है।
एक तरफ तो वो एक और बड़ी जेल है, प्रकृति की कैद, लेकिन दूसरी तरफ वो एक खाली कैनवस भी है
जहाँ एक नई कहानी लिखी जा सकती है।
वो ट्रेन रूपी जेल से तो आजाद हो गए, लेकिन अब वो एक ऐसी आजादी में है जो शायद मौत से भी बदतर हो सकती है।
भागने के बाद की जो स्थिति है वो शायद ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक है।
सैनिकों का डर पीछे छूट गया, लेकिन अब साइबेरिया की जानलेवा ठंड उनका दुश्मन है।
वो भूखे हैं, थके हुए हैं, और उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है।
आखिरकार उन्हें दूर एक रोशनी दिखती है, एक डाचा यानी एक छोटा सा देहाती घर,
और वो हिम्मत करके दरवाजा खटखटाते हैं।
एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। वो इन दो अजनबियों को देखती है, एक डरा हुआ लड़का, एक घबराई हुई विदेशी औरत,
और वो एक भी सवाल नहीं पूछती।
नहीं, वो बस दरवाजे से हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दे देती है, उन्हें शरण देती है,
और उपन्यास यही इसी पल में खत्म हो जाता है।
कोई आखिरी जवाब नहीं, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं।
हमें नहीं पता कि उनका भविष्य क्या होगा, क्या वो पकड़े जाएंगे, क्या वो बच निकलेंगे।
करेंगल हमें एक नाजुक सी सुरक्षा के पल में छोड़कर कहानी को रोक देती हैं, और मेरे ख्याल से उपन्यास की असली ताकत इसी अधूरेपन में है।
हाँ, क्योंकि ये कहानी मंजिल की नहीं, सफर की है।
ये इस बात की कहानी नहीं है कि आगे क्या हुआ, बल्कि इस बात की है कि उस पल में क्या हुआ। हेलेन के एक फैसले ने अल्योशा को एक तयशुदा मौत से बचा लिया।
आगे जो भी हो, वो एक पल हमेशा सच रहेगा।
इसका असर बहुत गहरा होता है। अल्योशा और हेलेन के बीच का वो खामोश रिश्ता, वो आपको अंदर तक छू जाता है।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे जरूरी मानवीय संबंध अक्सर शब्दों से परे होते हैं, उन्हें सिर्फ साझा इंसानियत की जरूरत होती है।
और ये भी कि हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद किसी और के लिए वो कदम उठाना जो सही है।
ये संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।